विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। आज हमारे स्टूडियो में जलगांव से डॉक्टर सैयद झाकिर अली साहब, इनको हमने आमंत्रित किया हुआ है। डॉक्टर झाकिर अली साहब जलगांव के एक कॉलेज में उर्दू साहित्य और उर्दू भाषा का अध्ययन करते हैं। डॉक्टर साहब को उर्दू पढ़ाने की और उर्दू साहित्य में विशेष रुचि है। अपना जो कोर्स है TYBA का, जिसका नाम है असनाफ अदब, अदब और ड्रामा, जिसमें दास्तान, नॉवेल और अफसाना हम पढ़ने जा रहे हैं, उसमें डॉक्टर साहब को ज़्यादा दिलचस्पी है और वो पढ़ाते भी हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना डॉक्टर साहब और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका हम आपस में बात करवा दे, ताकि हमारे स्टूडेंट के मन में जो समस्याएं चल रही है कि असनाफे का मतलब क्या है, अदब का क्या मतलब है, ऐसे बहुत से सवाल हमारे स्टूडेंट्स के मन में है, इसके बारे में डॉक्टर साहब से हम जानकारी प्राप्त करवा लेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डॉक्टर साहब को ना ही केवल इस विषय में रुचि है बल्कि उनका अनुभव भी बड़ा है। तो मैं अभी डॉक्टर साहब और अपनी बात शुरू करता हूँ। नमस्ते डॉक्टर साहब।
नमस्ते सर।
प्रथमतः मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरी ओर से और मेरी विद्या शाखा की ओर से।
शुक्रिया
डॉक्टर साहब। एक तो पहले मेरे जहन में जो सवाल उठता है
जी,
कि दास्तान जब भी हम बोलते हैं या किसी से सुनते हैं कि दास्तान है
जी,
तो मन में एक दुखद सी घटना या याद ऐसा कुछ महसूस होता है, तो ये दास्तान का मतलब क्या है, ये जरा हमको बताइए।
देखिए सर, दास्तान दरअसल ये उस जमाने की, जैसे कि आपने कहा कि एक दुखद सा एक एहसास हमको होता है, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बताता चलूं कि दास्तान उस सिन्फ अदब का नाम है जिसकी सबसे पहले शुरुआत अदब के अंदर, उर्दू अदब के अंदर सबसे पहले शुरुआत हुई। एक ज़माना वो था कि जब हम कहानियाँ सुनते थे, हमारे बाप दादा हमारे पूर्वजों से, हमारे बुजुर्गों से सुनते थे, नानियों की कहानियाँ मशहूर थी, वालदा की, अम्मा की कहानियाँ मशहूर थी, तो वो कहानियाँ जब भी आपको कहेंगी तो वो बहुत पुराने ज़माने की ही याद हमको दिलाती है। एक ज़माना वो था जब इंसान जंगलों में भटकता था, दिन भर शिकार करता था, खेती करता था, और रात में आकर कहीं ना कहीं उसको सर छुपाने के लिए पहाड़ों के दामन में पनाह लेता था। तो वो अपने अनुभव, दिन भर के दिन तो कट जाता था उनका, लेकिन रात गुजारने के लिए उनके पास में कोई ऐसा रास्ता नहीं था कि जिससे वो रात गुजारें, क्योंकि आराम करने के लिए भी डरते थे कि आराम करेंगे किसी जंगल में किसी दरिंदे ने, किसी शेर ने आकर हमला कर दिया, कोई और जानवर आ गया, तो थोड़ा सा ऐसा हो कि वो कुछ जागते भी रहें, कुछ सोते भी रहें और उनका काम आसान हो जाए। तो एक दूसरे को अपनी कथा कहानी दिन भर जो उन पर बीती है, वो अपनी रुदात जो है वो दूसरों को बताते थे। यहाँ से सर दास्तान की शुरुआत होती है। अदब के अंदर अगर हम देखें यही चीज़ें, आप पुराने ज़माने में देखें तो एक ज़माना वो था कि जब बादशाह, राजा, महाराजा, नवाब, इनको भी दास्तान सुनना इतना पसंद था कि अपने दरबारों में, अपने महलों के अंदर ये ऐसे लोगों को रखते थे कि जो अच्छे अंदाज के अंदर दास्तान कहते थे, और फिर उनसे, बादशाहों से उसका इनाम भी हासिल करते थे। आपने अलिफ लैला की कहानी सुनी होगी, बड़ी मशहूर कहानी थी। तो अलिफ लैला की कहानी भी मशहूर है कि एक बादशाह ने किसी से शादी किया और उसकी ये शर्त थी कि मैं जिस दिन मुझे रोज़ाना एक कहानी सुनाएगी बीवी, और जिस दिन उसकी कहानी ख़त्म उस दिन उसकी गर्दन मार दूंगा, उसकी कहानी ख़त्म नहीं होना चाहिए। तो एक ऐसी औरत भी उसको मिल गई कि जो उसको रोज़ाना कहानी सुनाती थी, यहाँ तक कि उसने 1000 रातों तक उसको कहानियाँ सुनाती रहीं, इसके लिए अलिफ लैला उसका नाम पड़ा, तो 1000 रातों वाली। तो ये कहानी दास्तान जो है इसकी अदब की एक पुरानी सिन्फ है, पुराना अदब है। और सबसे पहले जब हमारा प्रोज यानी कि नस्र, उर्दू नस्र जब शुरुआत हुई, तो सबसे पहले हमारे सामने दास्तान ही थी, तो समझ लीजिए वहां से हमारी दास्तानों का इब्तिदा हो जाती है।
सर जैसे कि अभी आपने कहा
जी
कि दास्तान बहुत सालों से बहुत पुरातन है, लेकिन आज भी हम उसे क्यों पढ़ते हैं? दास्तान हमें क्या सिखाती है, इसके बारे में जरा बताइए हमको।
देखिए सर, दास्तान में सबसे पहले एक बड़ी अच्छी बात है कि आज के ज़माने में आज इसकी ज़रूरत हम क्यों महसूस कर रहे हैं, तो इसका एक साइकोलॉजिकल या नफ्सियाती पहलू जो मैं कहता हूँ कि कहानी कहना और सुनना ये एक नेचर है। हम फिल्में देखते हैं, हम सीरियल देखते हैं, जहाँ कहीं कहानी में क्लाइमेक्स आता है तो वहाँ हम रुक जाते हैं, अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो यानी ये कि हमारे नेचर में वो चीज़ शामिल है। दूसरी चीज़ कि आज इसकी ज़रूरत क्यों है, तो ये चूंकि ये जो दास्तानें हुआ करती थीं इनमें एक किरदार ऐसा होता था कि जो किरदार मिसाली किरदार होता था, जिसको हम इन्हें एक उदाहरण के तौर पर पूरे समाज में मिसाल में पेश कर सकते हैं। जैसे दास्तान का कोई एक हीरो होता है, उस हीरो के अंदर बहुत सारी खूबियाँ होती हैं। वो हीरो जो है वो ईमानदार होता है, ताकतवर होता है, उसको दूसरों की मदद करने में मज़ा आता है, अपनी जान पर खेल कर दूसरों की मदद करता है, कभी कभी तो इतने बड़े बड़े नुकसानात वो सह लेता है कि उसको अपनी जान बचाने का मसला पैदा हो जाता है। तो आज हमारे यहाँ पर जो जिस तरह से इंसानियत भटक रही है, आज एक इंसानी ज़िंदगी इतनी सस्ती हो चुकी है कि ज़रा सी हलचल मच जाती है तो कहीं ब्लास्ट हो जा रहे हैं, कहीं कुछ हो जा रहा है, कहीं कुछ हो जा रहा है, और इंसानी खून बिल्कुल पानी की तरह बहाया जा रहा है। तो आज हम चाहते हैं कि ऐसी कहानियाँ वजूद में आएँ जो कहीं ना कहीं हमको ज़िंदगी से जोड़ें और इंसानी हमदर्दी हमारे अंदर पैदा करें।
तो आपका कहने का मतलब यह है कि दास्तान ने जो हमको मैसेज दिया हुआ है
जी,
वो आज भी वैलिड है, वो आज भी बहुत महत्वपूर्ण है।
बिल्कुल सर,
जैसे कि आपने कहा कि दास्तान में एक हीरो होता है
जी,
और वो हीरो जो भी कुछ अकल्पित या कुछ बुराई जो चल रही है उसके खिलाफ वो आवाज उठाता है। अभी दास्तान में स्त्रियों का भी वर्णन आता है,
हाँ।
और स्त्रियों के जो हालात वहां पे बताए हुए हैं, वो हालात और आज के हालात और स्त्रियों के प्रति किस नजरिए से देखना चाहिए, वो भी दास्तान में बहुत खूबी से दिया हुआ है। तो दास्तान का ये जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी सामाजिक जिम्मेदारी जो है
जी,
उसके बारे में जरा बताइए हमको।
देखिए दास्तान में एक चीज तो आपको मिलेगी कि कहीं दास्तानों में, आपको कई दास्तानों में ऐसा मिल जाएगा कि एक अबला है, एक ऐसी औरत है जो बिल्कुल असहाय बेसहारा औरत है, और उसका दास्तान का हीरो उधर से गुजर रहा है और वो परेशानी के आलम में है। वो औरत जो है वो चाह रही है कि उसे कोई ऐसे उसको रास्ता सुझाई नहीं दे रहा है, उसका वो पानी के लिए तड़प रही है, उसके पेट में अनाज नहीं है, वो मुसीबत में फंसी हुई है और वो चाहती है कि कोई उसको सहारा दे। आज हमारे यहाँ, और वो दास्तान का हीरो जब उसको देख लेता है तो दास्तान का हीरो उसके पास जाकर उससे कुछ फ़ायदा उठाने के लिए नहीं सोचता, बल्कि वो ये सोचता है कि मैं किस तरह से इसकी मदद करूं, किस तरह से इसको इस परेशानी से निकाल कर और उसकी मंजिल तक मैं पहुंचाऊं। तो ये एक सोच जो उस जमाने में थी, वो सोच हमको यहाँ पर आज इसकी ज़रूरत है कि आज हमारे यहाँ पर हमारा माशरा, हमारा समाज उस डगर पे जाकर पहुंच गया है कि अगर हम किसी तनहा लड़की को अगर देख लेते हैं तो आज उस पर कई तरह के हम उस पर ताने करते हैं, उसको कॉमेंट्स पास करते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं और हमारे दिमाग में पचासों ख्याल आ जाते हैं। ये एक बार भी हम ये नहीं सोचते कि ये परेशान हाल है, इसकी मदद कैसे की जाए, और अगर हम मदद करेंगे भी तो उसमें कोई ना कोई स्वार्थ हमारा अपना छुपा होता है। लेकिन दास्तानों में ऐसा नहीं होता था, दास्तानों में ये होता था कि दास्तान का हीरो जो है निस्वार्थ होकर बिल्कुल तमाम चीज़ों से दूर रहकर, अपने फायदे को बहुत दूर रखकर वो उसकी मदद करता था। तो इसलिए ज़रूरी है कि वो जो ज़माने में जिस औरत को, किरदार को जो पेश किया गया था और जिस तरह से हीरो उसकी मदद करता था, अगर ऐसी कहानियों का निर्माण, ऐसी कहानियां तख्लीक आज की जाएं, लिखी जाएं, तो कहीं ना कहीं समाज के अंदर अच्छा मैसेज जो है वो पहुंच सकता है।
सर जैसे कि अभी आपने कहा कि जो अबला है
जी,
उसे सबला बनाने के लिए दास्तानों में बहुत कुछ लिखा गया
जी,
लेकिन समाज में इसके अलावा बहुत बहुत सी और समस्याएं हैं। जैसे ऊंच नीच है, गरीबी और अमीरी है, जाति भेद है,
जी
एक दूसरे को हम समान नजरिए से नहीं देखते हैं।
नहीं।
तो इन जो सामाजिक समस्या आज भी मौजूद है उसके बारे में दास्तान में क्या क्या सुझाव दिए हुए हैं, इसके लिए क्या क्या उपाय सुझाए हुए हैं?
देखिए, हम जो आज समाज में ऊंच नीच भेदभाव का ये जो मामला चल रहा है, हालांकि ये हर जमाने में रही है, लेकिन इसका एंगल, इसका नजरिया देखने का अलग अलग रहा हर जमाने में। पुरानी दास्तानें जब हम पढ़ते हैं तो हमको एक बात ये अच्छी नजर आती है कि वहां पर जब कभी जो दास्तान के अंदर जिनके मेन किरदार हुआ करते थे, जिनको भी वो हाईलाइट करते थे दास्तानों में, तो उन्होंने कभी किसी इंसान को हिंदू मुसलमान ऊंच नीच अमीर गरीब की नज़र से कभी नहीं देखा, और इन तमाम चीज़ों से ऊपर उठकर उनकी मदद करने की कोशिश किया। तो एक अच्छा मैसेज ही हमारे को दास्तान के जरिए मिलता है। दास्तानों के जो किरदार होते थे वो आमतौर पर आपको शहजादों के, राजा महाराजाओं के, कंवर साहब और इस तरह के रईसों के किरदार हमारे दास्तानों के अंदर होते थे, लेकिन उनकी सोच जो होती थी जमीन की होती थी, रहते थे महलों में लेकिन उनका ताल्लुक जो था वो जमीन से जुड़ा हुआ था, और जमीन के लोगों के लिए उनके दिल में जो हमदर्दी थी तो वो किसी एक खास समाज या एक खास तबके के लिए नहीं थी, बल्कि जो भी चाहे मुसीबत में जो भी हो वो उसकी मदद करना अपना फर्ज समझते थे। तो एक अच्छा मैसेज जो है हमारे को इस तरह से भेदभाव से ऊपर उठकर जो है वहां पर मिलता था। कोई वो नाम भी नहीं पूछते थे, और अगर पूछते भी थे तो सिर्फ इसलिए पूछते थे ताकि उसको उसकी मंजिल तक पहुंचा दिया जाए।
जैसे कि अभी आपने कहा कि वो महलों में रहते थे लेकिन सोच जमीन की रखते थे, ये बहुत आपने बहुत अच्छा कहा, और वाकई में आज भी यही सोच की जरूरत है।
बिल्कुल
सर, दास्तान में जो आपने कहा अभी, जिसमें सामाजिक संदेश है, व्यक्तिगत संदेश है, स्त्रियों के प्रति संदेश है, सामाजिक समस्याओं के प्रति संदेश है, अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ऐसी कौन सी दास्तान है जो बहुत मशहूर है और आज भी लोग उसे याद करते हैं और अपने बच्चों को, पर्टिकुलरली जो स्टूडेंट्स है उर्दू के, या घर घर में उसके बारे में बच्चों को भी बताते हैं, उसके जरा हमको नाम बताइए।
उर्दू की सबसे मशहूर दास्तानों में जो पहला नाम जो सबसे ज़्यादा लिया जाता है, तो सबसे पहली एक दास्तान जो लिखी गई थी वो थी सबरस।
सबरस,
और सबरस के हालांकि उस जमाने की जो ज़बान थी दखनी ज़बान है, जो समझने में आज तकलीफ़ तो होती है, लेकिन जिसने सबरस जो जिसने थोड़ी सी दखनी पर अगर नज़र मार लिया और उसको अगर थोड़ा सा समझने लगा तो सबरस उसको बहुत मज़ा देती है। लेकिन उससे ज़्यादा मशहूर एक दास्तान हुई वो थी बागो बहार। जी, ये मीर अम्मन ने लिखी थी और फोर्ट विलियम कॉलेज के अंदर इसका एक्चुअली तर्जुमा है। ये बागो बहार कोई अपनी ज़ात से तबाज़ात जिसको कहते हैं उर्दू में, कि जो खुद से लिखी जाए, ऐसी दास्तान वो नहीं थी, बल्कि उर्दू में ज़्यादातर दास्तानें आपको अरबी या फारसी से ट्रांसलेशन की हुई, तर्जुमा की हुई दास्तानें मिलती हैं। तो बागो बहार जो दास्तान है वो बहुत ज़्यादा मशहूर हुई, और उसकी मशहूर होने की कुछ वजूहात थी, कुछ ऐसे कारण थे जिनकी वजह से बागो बहार ने उस ज़माने में भी शोहरत पाई, और आज भी जब लोग अगर उसको आपके सामने, हमारे सामने जब पढ़ा जाता है तो कुछ देर के लिए हम ठहर जाते हैं। हालांकि उसके किरदार ऐसे होते थे कि जो आज के ज़माने के जो, जैसा हम साइंस जो है दो और दो चार करके दिखाता है हमारे को, और साइंस ऐसी बातों को नहीं मानता जो जिसको अंधश्रद्धा हम कहते हैं, लेकिन उस ज़माने में वो किरदार ऐसे दास्तानों में थे जो हमारी अक्ल में नहीं बैठते, जिसको हमारी अक्ल स्वीकार नहीं करती, कबूल नहीं करती, उसके बावजूद भी वो दास्तानों के किरदार आज अगर हमारे सामने पढ़े जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा दिल चाहता है कि कुछ देर के लिए उनको सुना जाए।
तो दास्तान का ये जो आपने महत्व बताया
जी सर,
और ये जो मशहूर दास्तान है आपने बताई
जी,
ये तो हम चाहेंगे कि अपने स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, और जैसे सर ने अभी नाम बताए तो मैं आपसे विनती करूंगा कि ये एक दो नाम आप ये लेक्चर सुनते वक्त कुछ लिख भी लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सर, अभी दास्तान के बारे में आपने बताया
जी,
और दूसरा जो अपना है कि नॉवेल और अफसाना
जी,
अभी अफसाना नॉवेल ये दोनों दास्तान से अलग है क्या, या उसमें क्या फर्क क्या है? और हम ये अलग अलग क्यों पढ़ रहे हैं फिर? अगर दास्तान इतनी बड़ी है, इतनी हमको सिखाती है, तो नॉवेल और अफसाने का क्या महत्व क्या है?
देखिए सर, नावल भी एक कहानी है, दास्तान भी एक कहानी है और अफसाना भी एक कहानी है। आमतौर पर कंफ्यूज बच्चों को यही होता है कि तीनों में फ़र्क क्या है, कहानी ये भी ये भी ये भी, तो क्या सिर्फ छोटे और बड़े का फ़र्क है? ऐसा नहीं है सर। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो जो नावल की जो बिल्कुल अपने दास्तान की जो अहम उसकी जो विशेषता जिसको खसूसियत कहते हैं, उसकी क्वालिटी ये है कि उसमें एक तो बहुत ज़्यादा एक उसका प्लॉट नहीं होता सर, एक कहानी के साथ दूसरी, दूसरी के साथ तीसरी, तीसरी के साथ चौथी, यानी उसमें से अगर एक दो कहानियां कम कर दी जाए तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ना,
कड़ी जैसा।
हाँ, एक एक फर्क ये हो गया। दूसरा ये है कि बहुत ज़्यादा तवील होती थी नावल, इतने तवील उसकी बनिस्बत नावल इतना लंबा चौड़ा नहीं होता। तीसरा एक फर्क यह है कि उसके जो किरदार होते थे दास्तान के, तो वो जैसे हमने सीरियलों में भी देखा है, अलिफ लैला दास्तान के वगैरह, सिंदबाद जहाजी, इसमें जो किरदार होते थे तो वो हवा में उड़ने वाला जिन, जादू की अंगूठी, जादू की टोपी, जादू की शतरंजी, हवा में चटाई उड़ रही है, इस टाइप का कोई किरदार। अब कहानी देखिए नावल में भी है, लेकिन नावल जो है ये हमारी जिंदगी की सच्ची मुंह बोलती तस्वीर है, जबकि दास्तान उस जमाने में जब लोगों के पास काम नहीं था, लोग, आपने कहानियां भी सुनी, एक लक्कड़ हारा था वो बहुत गरीब था, एक बुढ़िया थी वो बहुत गरीब थी, एक बूढ़ा था वो बहुत गरीब था, यानी वो जमाने में हमको लेके जाते हैं जब लोग गरीब ज्यादा हुआ करते थे, उनके पास धंधे नहीं, व्यापार नहीं, कुछ नहीं, तो उस जमाने तो लोग परेशान हाल, बीमार हो गए तो इलाज नहीं, कहाँ जाएं। तो दास्तानों में ऐसी कहानियां इस तरह से पेश की जाती थी कि अगर उनको कोई पढ़े या सुने तो कुछ देर के लिए अपने दुख दर्द को भूल जाए, ये साइकोलॉजिकल पहलू था। और इंसान खो जाता है जिस चीज से उसको दूर रखा जाता है, या जो चीज उससे दूर है तो वो कहीं ना कहीं उसको देखता या सुनता है तो उसको अच्छा लगता है, तो उसमें वो किरदार इसलिए रखे जाते थे। नावल जो है हमारी जिंदगी की मुंह बोलती तस्वीर है, आप कहीं भी किसी की भी नावल उठाकर पढ़िए, आज जो प्रेमचंद और प्रेमचंद के बाद के जमाने के जो नावल लिखे गए, तो आप उसमें देखेंगे कि जिंदगी के ऐसे मुंह बोलते नमूने आपको मिलेंगे कि आपको एहसास होगा कि शायद मैं ये सब कुछ अपनी आंखों से आज भी देख रहा हूँ। सूरत बदली हुई हो सकती है लेकिन बहरहाल मसाइल और परेशानियाँ वही हैं। तो एक चीज़ यह है कि उसका मामला इसलिए अलग था कि उसकी कहानी के अंदर कुछ पार्ट्स ऐसे होते थे, उसका प्लॉट नहीं होता था, लेकिन इसमें किरदार हमारी अपनी ज़िंदगी के किरदार होते हैं और इसका प्लॉट होता है बाकायदा। इसमें कहानी नावल से अगर एक हिस्सा भी, एक दो मिनट के लिए दो चार लाइनें अगर निकाल दी जाएं तो आप नावल बंद करके सोचने लग जाएंगे यार यहाँ क्या हो सकता था। तो एक चीज़ ये है। तीसरी एक चीज़ है कि नावल में जो मकाम हुआ करते हैं, जो ज़मानो मकान जिसको कहते हैं, यानी जिस गांव की सिचुएशन की वो कहानी नावल के अंदर पेश की जा रही है, तो बाकायदा वहाँ की ज़बान, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का बयान, ये सारी चीज़ें हमारे को नावल में देखने को मिल जाती है। यानी नावल हमारी ज़िंदगी की सच्ची मुँह बोलती तस्वीर है, जबकि दास्तान हमारे ख्वाबो ख्याल की एक ऐसी दुनिया है जब जिसे हम परेशानी में ही देखना पसंद करते हैं। और अफसाने की आपने एक सवाल पूछा था कि अफसाना भी एक, तो अफसाना और नावल, अब देखिए ये नावल में भी वही कहानी पेश की जा रही है, अफसाने में भी एक कहानी सच्ची तस्वीर पेश की उसकी खींची जा रही है, लेकिन अफसाने में जिंदगी का सिर्फ एक हादसा, एक गोशा, एक कोना या एक वाकया उसमें बयान किया जाता है, जबकि नावल जिंदगी की पूरी तस्वीर उतारता है।
सर, जैसे कि अभी आपने कहा कि दास्तान एक ख्याली दुनिया है
जी,
उससे हम सीख भी सकते हैं बहुत कुछ बातें, हालांकि वो वास्तविकता में ना हो फिर भी हम उससे बहुत कुछ सीखते हैं, और नावल जो है वो एक आईना है वास्तविकता का, तो जब हम दोनों बच्चे जब दोनों पढ़ेंगे तब दास्तान को किस नजरिए से पढ़ना चाहिए और नावल को किस नजरिए से पढ़ना चाहिए, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ
जी,
क्योंकि अपने विद्यार्थियों के मन में ऐसा भ्रम हो सकता है कि अगर ये वास्तविकता में आ जाता तो वो नावल के इलाके में आ जाते।
बराबर।
अगर दास्तान से अगर उनको वास्तविकता, उन्होंने सोच लिया कि वास्तविकता में ऐसा हो सकता है तो वो नावल के इलाके में आ जाएंगे, और नावल में अगर जैसे कि आपने कहा कि किसी औरत का बहुत दुख पर जोर दिया है तो वो अफसाने के इलाके में आ जाएंगे। यानी जो क्रॉसिंग लाइन है
जी,
वो क्रॉसिंग लाइन बहुत ही ऐसी थीन है, तो इसके लिए अपने विद्यार्थियों ने किस तरह से ये चीजें पढ़नी चाहिए
जी,
इसके बारे में जरा बताइए। क्योंकि जब कोई पढ़ता है तो वो ये सोचता नहीं कि ये वास्तविकता है या ये ख्याली है, ऐसा वो सोच के पढ़ेगा नहीं, फिर भी उसे अंतिमता परीक्षा भी देनी है,
फैसला करना होता है।
तो इसके जरा टिप्स जो है वो हमारे स्टूडेंट्स को दीजिए ताकि उनको आसानी हो।
देखिए, नावल और दास्तान का जो बहुत वाज़ह और क्लियर जो साफ सुथरा फर्क है वो ये है कि दास्तान में प्लॉट नहीं होता, एक में एक कहानियाँ, जैसे प्याज को हम छीलते हैं तो प्याज का एक छिलका उतरता है, दूसरा आ जाता है, दूसरा निकलता है, तीसरा आ जाता है, इस तरह से कंटिन्यू उसमें किस्से आते चले जाते हैं, जबकि नावल में ऐसा नहीं होता। दूसरी बात, दास्तान बहुत लंबी चौड़ी होती है, नावल इतना लंबा तो नहीं होता, लेकिन बहरहाल इस फर्क से ज़्यादा फर्क यह है कि दास्तान के जो कैरेक्टर होते हैं तो उसको हमको समझना पड़ेगा कि वो कैरेक्टर वो होते हैं या तो बहुत अमीर है, शहजादा है, राजा का राजा महाराजा की औलाद है, या कोई बहुत बड़ा रईस, जबकि हमारे पास में नावल के अंदर हमको अमीर मिल सकता है लेकिन उसके साथ गरीब भी होंगे, उसके साथ हमारी ज़िंदगी के हमारे अपने अतराफ में आसपास रहने वाले लोग भी दिखाई देंगे। तो अपने लोगों को ढूंढने की कोशिश करिए, हमारी अपनी ज़िंदगी, हमारे अपने समाज में कौन से लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, नावल में वो हैं क्या, अगर वो हैं तो समझ लीजिए। हमें अगर मुसीबत आ रही है तो हमें नावल के अंदर अगर मुसीबत आ रही है तो उसका हल उसको खुद ढूंढना है, उस हीरो को ढूंढना है, उसको कोई बाबा आकर तावीज़ नहीं देगा। जबकि दास्तान के अंदर कोई पीर फकीर आकर, कोई साधु महात्मा आकर उसको साधु वो दे देगा कि ये ले तेरा काम हो गया, इसमें ऐसा नहीं होगा। तो ये फ़र्क हमको वाज़े तौर पर समझना पड़ेगा।
जैसे कि अभी आपने कहा कि नावल में जो वास्तविकता है वो वास्तविकता पढ़ के अपने बच्चों ने
जी
अपनी ज़िंदगी में, समाज में, अपने फैमिली में ऐसे कौन कौन से पात्र है कि जो दास्तान से, अपने नावल से मिलते जुलते हैं, उसका विचार करना चाहिए
जी।
और जो वास्तविकता है वो वास्तविकता पहचान लेनी चाहिए। अभी कई बार ऐसा होता है कि कई नावल में दुख पे इतना जोर दिया हुआ रहता है कि वो एक अप्सरा ही ऐसा बन जाता है। तो मेरा ये सवाल है कि क्या अप्सरा में खाली दुख दर्द ही दिखाई दिया जाता है या कुछ जो अच्छी बातें हैं, जैसे किसी औरत ने अन्याय के या जुल्म के विरुद्ध आवाज़ उठाई, औरतों को इकट्ठा किया, प्रचलित जो व्यवस्था है
जी
उसके बारे में आवाज़ उठाई, ऐसा कुछ है, या खाली निजी जिंदगी में जो दुख दर्द है वही अफसाने में दिखाई दिए जाते हैं?
नहीं नहीं सर, देखिए अभी आप अगर प्रेमचंद के अफसाने पढ़ेंगे तो हमको बहुत ज़बरदस्त ये चीज़ मिलती है, औरत के किरदार को, औरत के कैरेक्टर को इतना अच्छे अंदाज में उन्होंने हाईलाइट किया है कि उसकी खुददारी। मैंने देखिए अभी आपको एक अफसाना उनका है रोशनी, रोशनी में एक ICS ऑफिसर है जो एक गांव में आया है, लंदन से ICS का एग्ज़ाम पास करके आया है और गजनपुर नाम के किसी गांव में उसकी पोस्टिंग हो रही है। वो जब गांव जाने के लिए आता है तो अपने किसानों को देखता है, खेतियों को देखता है, रास्तों को देखता है, तो उसको कहीं भी तो ऐसा लगता है कि क्या लंदन है, क्या इंग्लैंड और क्या भारत है, बोले ये आज भी वही पुराना तरीका, आज भी वही घिसे पिटे रास्ते, वही सब कुछ। ये उसको एक बहुत गिरा कर वो देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसको जब महसूस होता है कि चारों तरफ से अब शाम हो रही है, चारों तरफ से बादल मंडला रहे हैं और कुछ आंधियां भी चलने लगती हैं, उसमें एक औरत जो बड़ी शान के साथ में उस आंधी तूफान के से मुकाबला करती हुई चली आ रही है, तो वो देखता है उसको और उससे पूछता है कि भाई गजनपुर यहाँ से कितनी दूर है। तो कहती है बाबा मेरे पीछे चले आ, बोले। और वो इतनी स्पीड में जाती है और ये हजरत उसके पीछे 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 जाते हैं। फिर उसके बाद में जब वो जाते हैं तो उसको शुक्रिया के तौर पर उसके बच्चे के हाथ में 5 रुपये देने की कोशिश करते हैं, तो बोलते नहीं मैं जो है मेरी आबरू जो है मेरा शौहर जो है उसकी आबरू इसी में है कि मैं खुददारी से रहूं, अपना पैसा अपने पास रखो। बोले मेरा शौहर अगर जिंदा होता तो तुम्हें उस गांव तक के छोड़ के आता, बाबा मेरा बच्चा बीमार है या मेरा बच्चा भी रो रहा है, शाम हो गई है, मैं आपके साथ नहीं आ सकती। तो ये सोचता है कि वहां सब कुछ है लेकिन इंसानियत तो भारत में ही है। तो इन्हें उसके तो ये एक औरत, ऐसे बहुत सारे प्रेमचंद की कहानियों के अंदर आपको किरदार मिलेंगे कि जो हमको एक औरत को जिंदा रहना और वो भी अपनी पूरी स्वाभिमान के साथ में जिंदा रहना वो सिखाते हैं। और भी दूसरे अफसाना निगार हैं जिन्होंने बहुत अच्छे औरत के किरदार को, कैरेक्टर को हाईलाइट किया है। और औरत की जैसे आपके इसमें आप अगर इस्मत चौताई वगैरह को इनको पढ़ेंगे तो इनमें कहीं ना कहीं आपको ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी कि जिनसे एहसास होगा कि हमारे भारत में जो औरतों की, मुसलमान तबके में जो औरतों की कंडीशन है, कई अफसाने ऐसे लिखे गए, कई नावल ऐसे लिखे गए कि जिनमें पुरानी रस्म व रिवाज के खिलाफ बगावत है। तो इस तरह से हमको काफ़ी हौसला देने वाले नावल और कहानियाँ जो है, अफसाने हमारे अदब के अंदर मौजूद हैं।
सर जैसे कि अभी आपने बताया कि देश प्रेम
जी
ये प्रेमचंद जी के अफसाने में भी दिखाई देते हैं और जिसकी बहुत जरूरत भी है। सर जैसे आपने अभी कहा कि अगर हमारे स्टूडेंट्स समझो नॉवेल पढ़ रहे हैं या अफसाना पढ़ रहे हैं, तो अगर वो जिस समस्या का वर्णन किया हुआ है नॉवेल में या अफसाने में, वो एक समस्या लेके आज के वास्तविकता में उस तरह की कौन कौन सी समस्या है, अगर उनकी एक लिस्ट बनाए तो उनको वो समझने के लिए आसानी होगी, ऐसा आपको लगता है क्या? आप इसके बारे में क्या जानकारी देंगे?
सब अदब, समाज अदब जो होता है जिसको हम नावल के रूप में देखते हैं, कहानी के रूप में, दास्तान के रूप में देखते हैं या शायरी के रूप में देखते हैं, ये समाज का आईना होता है। आज समाज में जो समस्याएं हैं, जो मामलात हमारे बीच में चल रहे हैं, चाहे वो किसी भी टाइप का मसला हो, चाहे वो आपस में लड़ने मरने का मसला हो, चाहे वो आतंकवाद का मसला हो या देश प्रेम का मसला, जो भी हो, तो आज हमारे पास में नावल भी ऐसे हैं और उसके अंदर कहीं ना कहीं हमको कंपैरिजन करना चाहिए कि ये कैरेक्टर क्या थे और हम क्या हैं। हम उनकी बुराई तो उसमें से, विलेन की बुराई तो हमारे अंदर हम फौरन कोशिश करते हैं कि हम उससे हासिल कर लें, लेकिन फिर अगर हमने ये हासिल किया तो अच्छाई किसके लिए छोड़ी?
किसके लिए?
तो हमको उसके पॉजिटिव किरदार पर नज़र रखनी चाहिए। और वो समस्याएं जिनके सामने सीना सिपर होकर, सीना तान कर हीरो आता है और अपना सब कुछ गंवा देता है, लेकिन उसके लिए वतन सब कुछ होता है, तो मैं समझता हूँ कि हमारे नौजवानों को भी यही चीज़ें हमारे अपनी कहानियों में तलाश करनी चाहिए और उसकी अच्छाइयाँ के देश, मुल्क और वतन और अपने कौम के लोगों को किस तरह से वो क्या दे सकता है, हमारी कहानियों में से क्या ऐसी चीज़ है कि जो हम लेकर उसको इम्प्लीमेंटेशन हमारी ज़िंदगी में उसका कर सकते हैं, तो उस पर गौर व फोकस करने की ज़रूरत है। और हमारे पास ऐसी कहानियां हैं जो हम हमारी रहनुमाई कर सकती हैं इस मामले में।
तो आपका कहने का मतलब ये कि हमारे जो विद्यार्थी हैं
जी,
उन्होंने कहानी या अफसाना एक कहानी समझ कर नहीं पढ़ना चाहिए कि वो अपने को क्या दिखाती है, क्या सिखाती है, ये अपने मर्ज में रख कर भी पढ़ना चाहिए।
बिल्कुल
सर, हमारे जो काउंसिलर है जो ये विषय पढ़ाते हैं
जी,
तो आपके दृष्टिकोण से उन्होंने किस तरह से ये अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहिए, क्या क्या उसमें वो कर सकते हैं ताकि इसका जो अध्ययन है, जो पढ़ाना है, वो बहुत अच्छा हो और स्टूडेंट्स को भी अच्छा लगे कि कुछ नया उनको मिले। आप उनके लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे, हमारे जो शिक्षक हैं जो ये पढ़ाते हैं विषय?
देखिए सर, मैं आपसे बाबा साहब अंबेडकर के ताल्लुक से एक बात कहूँगा। बाबा साहब के बारे में एक जगह सुना था और कुछ पढ़ने में भी आया है कि बाबा साहब जब किसी कॉलेज में लेक्चर देते थे, बाबा साहब तो बहुत लर्नेड और बड़े स्कॉलर इंसान थे, उसके बावजूद वह एक टॉपिक को लेकर 10 मरतबा नोट्स बनाते थे, 10 मरतबा फाड़ते थे, वो कभी सेटिस्फाई नहीं हुए। हम अगर संतुष्ट हो जा रहे हैं अपनी टीचिंग से, इसका मतलब कि हम में वो कमी है। तो हमको आज अच्छी किताबें अवेलेबल हैं सर, जो हमारे को नए और पुराने लिटरेचर से, नए और पुराने नावलों से, नई और पुरानी शायरी और अफसानों से हमारे को उसका फ़र्क भी बताते हैं और नई नई तकनीक जो उसके अंदर टेक्निक्स इस्तेमाल की जा रही हैं तो वो भी बताते हैं। तो हमको इसका जितना ज़्यादा हो सकता होगा, अगर हम स्टडी करेंगे, जितनी ज़्यादा हम स्टडी करते हैं, जितना बर्तन में भरा जाएगा उतना ही उंडेला जा सकता है। हम सिर्फ ये सोचें कि हम बहुत कुछ सीख चुके तो समझ लो हमारा अंत हो चुका वहाँ पर, फिर हम नहीं दे सकते। हमको तो एक विद्यार्थी बन को देने से पहले खुद विद्यार्थी बनना पड़ेगा,
बराबर,
और अच्छी स्टडी करने के बाद ही हम बच्चों को अच्छा लिटरेचर दे सकते हैं। मार्केट में बहुत अच्छी किताबें अवेलेबल हैं, बस ज़रूरत है कि उनको खंगाला जाए और उनसे संजीदगी के साथ में, बहुत गंभीरता के साथ में बैठकर उस पर विचार किया जाए, उससे नोट्स लिए जाएँ और हमारे बच्चों को भी ऐसी तरगीब दी जाए। एक अच्छा टीचर वो नहीं होता जो अपने बच्चों को संतुष्ट कर दे, एक अच्छा टीचर वो होता है जो अपने बच्चों को बेचैन कर दे कि वो किस तरह से आप हासिल करें। तो ये चीज़ हमारे अंदर अगर पैदा होती है तो हम बच्चों को बहुत कुछ दे सकते हैं।
बहुत अच्छा सर, जैसे अभी आपने कहा कि अपने टीचर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वैसे अपने स्टूडेंट्स की भी है। जैसे कि अभी दास्तान या अफसाने में ऐसे कई शब्द उनको मिलेंगे जो उन्होंने कभी पहले पढ़े नहीं, तो आप ये चाहोगे कि स्टूडेंट्स ऐसे शब्दों की एक लिस्ट बनाए और अपने टीचर से उसके बारे में मालूमात करें?
बहुत अच्छी बात है सर।
या फिर आज उस शब्द में कैसा परिवर्तन आ गया है उसके बारे में भी वो जान दे, ताकि उनका जो अध्ययन है वो बहुत आनंद देने वाला हो जाएगा, इसके बारे में जरूर बताए।
सर ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि वो टर्मिनोलॉजी, जो इस्तिलाहें जिसको हम उर्दू में कहते हैं, ऐसी टर्मिनोलॉजी जैसे पुराने ज़माने की कुछ रस्म व रिवाज थी, वो हमको पुराने नावलों और दास्तानों में मिलती हैं। जैसे कोई दास्तान पढ़ लो तो कहीं कुल का घोड़ा मिलता है, कहीं चौथी की रस्म मिलती है, ऐसी बहुत सारी रस्म व रिवाज हमको मिलती हैं। तो हम पढ़ तो ले रहे हैं लेकिन उनको सबसे पहले इनकी लिस्ट बराबर बनाना चाहिए कि हम जहाँ कहीं भी हों किताब पर उसको टिक मार कर दें और उसके बाद में पूरी किताब या पूरी कहानी से वो सारे वर्ड्स जो हैं वो हम नोट करें और किसी अच्छे जानकार इंसान से उसके बारे में पूछें कि भाई ये क्या है। और जब तक कि हम उसका एक एक वर्ड हमारे को समझ में नहीं आ जाता, तब तक कि उसमें मज़ा नहीं आएगा और वो कहानी का रस जो है वो हम उससे फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। तो उसकी लिस्ट बनाकर, और कुछ ऐसी किताबें भी हमारे पास में, हमारे मार्केट में रहती हैं कि जो पुरानी, और आजकल तो एक चीज़ ये हो रही है कि कुछ किताबों में, जैसे आप अगर दखनी लिटरेचर पढ़ते हैं तो पीछे पूरा उसका लिस्ट दी रहती है, इसके मीनिंग क्या हुए, इसकी मीनिंग क्या हुए, इसकी मीनिंग क्या हुए। तो इस तरह से अगर हमारी जस्तुजू है तो हम समंदर पार कर सकते हैं।
सर जैसा अभी आपने कहा जस्तुजू बहुत बड़ी चीज़ है
जी,
और समुंदर पार कर सकते हैं, तो विद्यापीठ की भी यही जस्तुजू है कि जो अपने उर्दू के भाई बहन है उनको ये पढ़ने का मौका मिले, ग्रेजुएशन पूरा करने का मौका मिले, और इसके लिए सब हम ये प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि अभी आपने कहा कि जस्तुजू होनी चाहिए, एक सवाल मेरे मन में ऐसा आता है कि हमारे स्टूडेंट्स के पास अभी ये आपका लेक्चर तो जाएगा
जी,
किताबें वो ले लेंगे अपने लाइब्रेरी से या अपने काउंसिलर से, लेकिन एक जो सोर्स है नॉलेज का, ज्ञान का, वो उनके घर में भी मौजूद है, उनके पिताजी या घर में ऐसी जो बड़ी व्यक्ति है उनसे भी वो बहुत जानकारी ऐसी हासिल कर सकते हैं। तो इसके बारे में हमने आप हमें बताइए, ताकि हर गांव में ऐसा कोई ना कोई बुजुर्ग व्यक्ति, स्त्री या व्यक्ति होती है कि जो बहुत सी जानकारी उनके पास है लेकिन उनके पास जाके पूछने वाला कोई नहीं होता। तो किस तरह से अपनी ये जानकारी अपने स्टूडेंट्स हासिल कर सकते हैं, इसके बारे में जरा बताइए।
जी सर, सबसे बहुत अच्छी बात आपने कही सर, कि आज हम एक तरफ ये देखते हैं कि समाज का वो तबका जो रिटायर्ड हो चुका है वो आज बात करने को तरसता है, उससे कोई बात करने वाला नहीं होता। जो बात करना चाहता है, जो देना चाह रहा है, हमने खंगाला नहीं, उसको कचरे का डिब्बे में डाल दिया उसको। तो हमको ऐसे रिटायर्ड टीचर हमारी बस्ती, हमारे मोहल्ले में ऐसे रिटायर्ड लोग जो अपने पास में पूरा तजुर्बात का एक भंडार रखते हैं, एक खजाना है उनके पास में, अगर हम उनके पास जाकर बैठे तो वो तो मोहताज हैं इस बात के, और वो तमन्ना करते हैं कि ये बच्चे हमारे पास आके बैठे हैं। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे राह रवे मंजिल ही नहीं। जब बच्चे ही उनके पास नहीं जा सकते तो वो तो बुजुर्ग इंसान है, वो कहां तुम्हारी जरूरत को समझ, तुमको जरूरत महसूस हो रही है। ऐसे लोगों को जाकर मिलना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, और उनसे फिर देखिए, आप कहते हैं कि एक आलिम का यानी ज्ञानी का 2 घंटे का उसके साथ में बैठना 20 साल की स्टडी से ज्यादा फायदे की चीज है, क्योंकि वो जो भी देता है वो सिलेक्टेड देता है, आइटम तुम्हारे सिलेक्टेड है, अपनी जिंदगी का तजुर्बा दे रहा है वो तुमको। 50 किताबें खोल के नहीं रख रहा है, उसने तो निकाल लिया है उसमें से सब, पूरी जिंदगी निकालता रहा वो, आज सिर्फ तुम्हारे सामने गुलदस्ते की शक्ल में पेश कर रहा है, लेने वाला होना। तो हमारी बस्ती में ऐसे लोग जो हैं, तो जो समझदार जो सोशल वर्कर हैं उनको भी चाहिए कि जो समाज तालीम के मैदान में काम कर रहे हैं, ऐसे लोग अगर ऐसे लोगों का एक बाकायदा संगठन बनाकर और उनका कोई टाइम ऐसा रखें और बच्चों को जाकर बोलें कि ये लोग आपको इस टॉपिक पर आपकी रहनुमाई करेंगे, आपको मार्गदर्शन दे सकते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग बहुत खुशी के साथ में हमारे साथ में आने को तैयार हैं। शर्त यह है कि उसको एक व्यवस्थित ढंग से, एक सिस्टमेटिक तरीके से हम वहाँ पर ऑर्गेनाइज करें और ऐसे प्रोग्राम तैयार करें ताकि वो लोग भी अपना वक्त दें और बच्चे भी उस पीरियड में आकर उनसे मिल सकें।
सर, ये बहुत आपने महत्वपूर्ण बात कही कि जो ज्ञान है वो किताबों में नहीं है। आप किताब एक जरिया है कि जिसके जरिए से आप बहुत सी चीज़ें हासिल कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, अभी सैयद जाकिर अली साहब ने हमको बताया नॉवेल, अफसाना और दास्तान के बारे में, उसमें क्या फ़र्क है, वो किस तरह से पढ़ना चाहिए, ये उन्होंने हमको बताया। जैसे कि सर ने कहा कि आप खाली किताबें ना पढ़ें, जो कुछ रियलिटी में आप देख रहे हैं वो रियलिटी और किताब में दी हुई बातें, इसका आप कंपैरिजन करें, उसका नाता जोड़िए, ताकि आपका जो लर्निंग है वो खाली किताब से नहीं जुड़ा रहेगा। जैसे कि सर ने बताया कि आपके घर में जो भी बुजुर्ग है उनसे भी आप बहुत सी जानकारी हासिल कर सकते हैं। सर, आप आज यहाँ आए और हमारे स्टूडेंट्स को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए मैं आपका, मेरे खुद की तरफ से और यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र विद्यापीठ की ओर से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि जब भी हम चाहेंगे कि अली साहब अपने स्टूडेंट से बात करें तब आप हमको समय देंगे। आज बहुत अच्छा लगा मुझे कि आपने स्टूडेंट्स को इतनी बातें बताई जिनका उपयोग उनको दास्तान, अफसाना और नावल पढ़ने में होगा। मैं आपका बहुत आभारी हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ।
मैं भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा सर कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाकर और मुझे इस योग्य समझा, एक मौका दिया कि मैं 2 बातें आपके सामने आपके विद्यार्थियों के साथ कर सकूं, आपके नहीं बल्कि अपने विद्यार्थियों के साथ कर सकूं, तो ये मेरा सौभाग्य है। और जब जब भी आप मुझे आवाज़ देंगे मैं बिल्कुल हाजिर रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।